खुदावन के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से इफ़्सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 5 बाप, उसकी 10वीं आयत से 14वीं आयत तक। नए अहदनामा में से इफ़्सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 5 बाप, उसकी 14वीं आयत तक, 10वीं आयत से 14वीं आयत तक। हमने 10वीं आयत में सीखा था कि तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा को क्या पसंद है। दाऊद ने तजर्बा किया, जदाउन ने तजर्बा किया, मूसा ने तजर्बा किया और जाना कि खुदावन खुदा की मर्जी क्या है। जब दाऊद खुदावन की हजूरी में था तो उसने इस बात से तजर्बा किया, जब वो जाति जूलियट के सामने खड़ा है, जाति जूलियट उसकी कौम पर, खुदा पर लानत कर रहा है, तो दाऊद बादशाह बनने से पहले चरवाहे की हैसियत से कहता है कि तू कौन है कि जिंदा खुदा को ललकारे। और वो जानता था और उसने अपना तजर्बा बताया कि जब बादशाह मेरे भेड़ों के बच्चों को कोई शेर कोई रीछ उठा कर ले जाता है तो मैं उसके पीछे जाता हूँ और अपने भेड़ के बच्चों को उसके मुंह से निकाल लाता हूँ। तो दाऊद प्रस्तार था, खुदा पर तवक्कल करने वाला और उस पर खौफ रखने वाला था। उसने तजर्बा किया। मूसा जिसने अपने पहले 40 साल बादशाह की रहनुमाई में तालीम में हर तरह की उसने तालीम और तजर्बे को हासिल किया, हर तरह की, जैसे कह सकते हैं कि जब किसी यहूदी को बताया जाए कि मूसा उनकी पूरी तारीख में ऐसा बंदा रहा जिसने मिस्र के हर उस उम्दा स्कूल में तालीम पाई और उम्दा हिकमत और दनाई हासिल की, और ऐसा बंदा रहा जिसने खुदा की तजर्बे से क्या की मर्जी को जाना परखा। इसीलिए मूसा ने पहली 5 किताबें शरीयत की लिखी कि खुदा ने उसे चुना। और आप सबको याद होगा जब वो भेड़े चरा रहा था तो खुदा ने कहा अपने जूते उतार और ये जगह पाक है, मैं तुझे भेजूंगा इस मिशन के लिए। तो उसने कहा कि मैं कैसे जानूंगा कि तू मेरे साथ है। और आप सबको पता है फरून और मूसा के दरमियान जो बातचीत हुई, लाठियां सांप बन गई और उसके बाद मौजे पर मौजा, आफत पर आफत। सो हमें बहुत से वाकयात मिलते हैं पुराने अहदनामा में कि खुदा की मर्जी को कैसे जाने। पुराने अहदनामा में नूह का जिक्र मिलता है। हमने पिछले दिनों में देखा कि उसने खुदावन खुदा की आवाज को सुना, खुदावन खुदा ने उसे कहा और उसने उसकी बात का यकीन किया। तो तजर्बा से मालूम करते रहो, जिसके बारे में पालूस रसूल हमें नए अहदनामा के उन तमाम ईमानदारों को क्या कहता है, रोमियो 12 बाप उसकी 1 आयत। ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन अपनी जिंदगियां ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक है और खुदा को पसंदीदा हो। खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। तो अपने बदन को अपनी सोच को अपनी रूह को खुदावंद के हजूर इस तरह पेश करना है कि उसको पसंद आए। और 11वीं आयत में हम सीख रहे हैं, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। ईमानदारों को बुत परस्ती से क्या वास्ता, ईमानदारों को शरीरत शरारत की बातों से क्या वास्ता, जिसके बारे में जबूर 1 उसकी 1 आयत में क्या हमने पढ़ा, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। क्या लिखा है, किसी को याद है पूरी आयत? मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वो बंदा क्या है, मुबारक है। वो बंदा खुदा की तरफ से पसंदीदा है क्योंकि वो खुदा के हुक्म की क्या करता है, ताबेदारी करता है। सो हमने पिछले दिनों में देखा था कि इस 11वीं आयत में क्या है, दो हुक्म हैं। पहला हुक्म क्या है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। ये पालूस रसूल का वो रवैया है जिसमें वो हुक्म के तौर पर कहता है। हमें बाइबल मुकदस में बड़े मुख्तलिफ रवैये मिलते हैं, जैसे कि ख्वाहिश है। याद आपको यीशु मसीह जब सारी सारी रात पहाड़ों पर गुजारता था, बियाबान में दुआ की हालत में खुदा से बात करते हुए, तो एक दिन खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ पर बैठकर यरूशलेम पर नजर की, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। याद है किसी को, जब यीशु मसीह के आंसू बह रहे थे कि काश तू अपने दिन को पहचानती, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तूने क्यों अपने खुदावंद को रद्द कर दिया? काश के जैसे मुर्गी अपने बच्चों के अपने परों के तले नीचे छुपा लेती है, काश के तू मेरे पाँव के नीचे, मेरे परों के नीचे होती। वहां पर यीशु मसीह की ख्वाहिश है, और फिर यीशु मसीह का हुक्म भी है, जाओ और जाकर कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। फिर यीशु मसीह की सलाह भी है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। फिर यीशु मसीह ने नसीहत भी की है कि जो कोई इन छोटे बच्चों में से अपने आप को नहीं बनाता, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। ये सारे रवैये, ये सारी सोचें हम क्यों देखते हैं? ताकि हमें पता चल जाए कि पालूस रसूल यहाँ पर किस रवैये में बात कर रहा है। सो कौन सा रवैया है? हुक्मियाना। कौन सा रवैया है? हुक्मियाना। और कहता है तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, शामिल ना हो, उनसे तलक ना रखो, उनसे तुम्हारा कोई वास्ता या कोई रिश्ता या कोई कह सकते हैं कि लेना देना ना हो। ये एक लफ्ज में इतनी बातें निकलती हैं कि तारीकी, तारीकी क्या है? अबलीस, शरीर, उसके काम। अबलीस की जो बातें हैं उसमें शरारत की बातें पाई जाती हैं। सो हमें क्या करना है? शरारत के कामों से दूर रहना है। अगर रहेंगे तो बरकत पाएंगे, अगर नहीं रहेंगे तो बरकत अपनी खुद रोकेंगे। सो शरारत के, शरीर के बेफल कामों में शरीक नहीं होना। और वो बेफल काम बहुत से हो सकते हैं जिसमें जिस्म के काम हमें जाहर किए गए हैं। सबको याद है जिस्म के काम? गलतियों 5 बाप उसकी 19वीं आयत, 19वीं और 20वीं आयत, 21वीं आयत तक अगर कोई निकाले तो वो बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। गलतियों 5 बाप उसकी 19वीं आयत से, ये वो तमाम क्या है? जिस्म के काम है, वो बेफल काम जिनसे पालूस रसूल कहता है तुम्हें रफाकत और शराकत नहीं रखनी, इनसे बाज रहना है, क्योंकि ये तमाम जिस्म के फल क्या करते हैं? किसकी कुव्वत में पैदा होते हैं? जब हम अपने आप को अबलीस के ताबिया कर देते हैं, जब हम अपने बदनों पर अबलीस को कहते हैं कि हुकूमत कर। सो इसीलिए कहता है पालूस रसूल, ये तमाम नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, हसद, झगड़ा, नाच, रंग, सब कामों को वो बयान करता है कि पहले से जता देता हूं कि खुदा की बादशाही में ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारस ना होंगे, वारस ना होंगे। ईमानदारों को इस बात से बड़े ही खबरदार रहने की जरूरत है कि हम आसमान की बादशाही में अपनी विरासत को ना खोएं, वारस ना होंगे। बेटे तो होंगे लेकिन वारस ना होंगे। इस आयत को बहुत दफा लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि अगर कोई बुत परस्ती या जादूगरी करेगा तो वो हमेशा की जिंदगी खो देगा। हमेशा की जिंदगी की पालूस बात नहीं कर रहा, मेराज की बात कर रहा है, विरासत की बात कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर इस फसाद को मेरे साथ देखें, वो हरगिज यहाँ पर हमेशा की जिंदगी को खोने की बात नहीं कर रहा। मेरे साथ निकाले रोमियो 8 बाप, रोमियो 8 बाप उसकी 14 आय से 12वीं आय से पढ़ेंगे। यहां पर पालूस रसूल क्या कहता है, पस ए भाइयों, पस ए भाइयों, कौन ईमानदारों से बात कर रहा है, रोमियो 8 बाप उसकी 12 आयत, पस ए भाइयों हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, के जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, जिस्म के मुताबिक, जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक, जिस्म की रहनुमाई के मुताबिक नहीं, और जिस्म के काम कौन से हमने सब देख ले, झूठ, फसाद, हसद, झगड़ा, लड़ाई, नापाकी, बुत परस्ती, जादूगरी, चुगलियां वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी लिस्ट हमें मिलती है। 13वीं आयत, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नबूद करोगे तो जीते रहोगे। हमें रूह की कुव्वत से जिस्म के कामों को क्या करना है, नेस्त व नबूद करना है, खत्म करना है, उनका इख्तियार अपने ऊपर नहीं आने देना। और 14वीं आयत क्या कहती है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। कब, जब लोग हमें देखेंगे तो कहेंगे कि ये खुदा के रूह की रहनुमाई में चलता है तो ये खुदा का मानने वाला है। अगर हम कहें कि मेरा नाम पतरस मसीह है और मैं वहां पर बुरे बुरे काम करता हूं तो कोई मुझे मसीही कहेगा? नहीं। कोई मुझे खुदा का बेटा कहेगा? नहीं। वो यही कहेगा कि ये अबलीस है, इसमें अबलीस है, ये अबलीस के काम कर रहा है। पालूस रसूल कहता है कि खुदा की रूह की हदायत से जो चलते हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और 15वीं आयत, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली, हमें गुलाम नहीं बनना कि जिस्म के कामों के गुलाम हो, जिससे फिर डर पैदा हो, वो डर के हम खुदा से भागे, नहीं खुदा से भागना नहीं, खुदा की तरफ आना है, फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। खुदा ने हमें वो रूह दिया है जो हमें गुलाम नहीं बनाता बल्कि क्या बनाता है, बेटे बनाता है। वहां पर क्या था, खुदा की बादशाही के वारस ना होंगे, बेटे तो ठहरेंगे लेकिन बहुत दफा लोगों को मिरास नहीं मिलती। बहुत से बापों के पास जमीन होती है, 4 बेटे हों, चारों को जमीन दे दी और 5वें को नहीं दी, वो बेटा तो है लेकिन उसको मिरास नहीं मिली। वैसे ही हम ईमान लाते हैं, हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी और उन लोगों को मिरास नहीं मिलेगी जो रूह की हिदायत में जिंदगी नहीं गुजारते बल्कि तारीकी के कामों में शरीक रहते हैं। 16वीं आयत, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा के फर्जंद हैं। अगली आयत, और अगर फर्जंद हैं तो वारस भी हैं, यानी खुदा के वारस और मसीह के हम मेरास, खुदा के वारस और मसीह के हम मिरास। आगे क्या लिखा है, बाशर्ते, शर्त क्या है अगर हम उस मिरास को कायम रखना चाहते हैं, बाशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। अगर इस दुनिया पर मैं अपनी मन मौजी की जिंदगी गुजारता रहूं, हां की जगह ना, ना की जगह हां करता रहूं, तो आसमान पर खुदा का बेटा तो कहलाऊंगा, जमीन पर खुदा का फर्जंद तो कहलाऊंगा, लेकिन मेरी मिरास खुदा की बादशाही में कुछ भी नहीं। पालूस रसूल कहता है हां, खुदा का पाक रूह कहता है हम खुदा के बेटे हैं, खुदा के फर्जंद हैं, मसीह में मिरास के मालिक हैं, अगर हम उस मिरास को कायम रखेंगे। शर्त क्या है, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं, सादा तौर पर अगर उसके साथ जिंदगी गुजारेंगे तो उसके साथ जलाल भी पाएंगे। तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे जी मैं आपका हमदर्द हूं, इसलिए उस हमदर्दी में अच्छी बात है कि हमदर्द हैं, लेकिन अगर गलत बात है तो उस गलत बात से हमें बाज या बचे रहने की जरूरत है। बहुत दफा खुदा की बादशाही के वारस इसी तरफ इशारा है कि उसमें हमारी मिरास क्या होगी। जहां जहां लिखा है कि हमेशा की जिंदगी के वारस ना होंगे तो उसका मतलब है गैर ईमानदारों से बात हो रही है। ईमानदारों को कभी भी नहीं कहा गया कि तुम ईमान लाने के बाद उस हमेशा की जिंदगी को खो दोगे। सो हमें शरारत के कामों में, शरीर के कामों में और ईमानदार होते हुए तारीकी के बेफल कामों में शरीक नहीं होना, उनसे बाज रहना है। आप सबको याद है पालूस रसूल ने कलीसिया को, करंथस की कलीसिया को हुक्म दिया था, दूसरा करंथी उसका 6 बाप उसकी 14वीं आयत, 14वीं आयत में वो कहता है, यहां पर वो तकरीबन 5 सवाल करता है ईमानदारों से, 5 सवाल करता है ईमानदारों से कि ईमानदारों का मेल मिलाप कैसा होना चाहिए। दूसरा करंथियों 6 बाप उसकी 14 आयत, 14वीं आयत में लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। देखते हैं ना, जब जमीन को तैयार किया जाता है तो दो ढगे होते हैं जो जुए में जोड़े जाते हैं, जो इस बात की अलामत है कि वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं। पालूस रसूल कहता है ईमानदार और गैर ईमानदार, मसीही बंदा और कोई और मजहब की औरत, उनका मेल मिलाप नहीं है। ईमानदार और गैर ईमानदार का मेल मिलाप नहीं है कि वो क्या करें, ना हमवार जुए में जुतें। सो पहला सवाल ये क्या करता है, ना जुतो क्योंकि रासबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, रासबाजी और बेदीनी का कोई मेल जोल नहीं है, कोई शराकत नहीं है उसमें, कोई रफाकत नहीं है। और फिर क्या कहता है, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत, दूसरा सवाल। और तीसरा क्या कहता है, मसीह को बलियाल, यानी कि इसका मतलब है शैतान, शरीर, बदी से क्या वास्ता, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, मतलब मुआफकत या रिश्तेदारी, मसीह की शैतान के साथ, अबलीस के साथ कोई भी क्या कहते हैं रफाकत और रिश्तेदारी नहीं। और अगला सवाल करता है, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, इसका हरगज मतलब नहीं कि हम एक दूसरे को मिलें जुलेंगे, नहीं, यहां पर वो शराकत की बात कर रहा है, रफाकत की बात कर रहा है, ऐसी रफाकत जो मसीही रफाकत है, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत, खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत। खुदावन खुदा का कलाम हमें बहुत सी सच्चाइयाँ बयान करता है कि किस तरह शरारत के कामों से हमें बाज रहना है। मेरे साथ एक और हवाला देखें, इमाल 17 बाप, वहां पर पालूस रसूल भी इसी बात के, अथीने के लोगों को, अथीने के लोगों को जो नामालूम खुदा की इबादत कर रहे थे उनको समझाता है, जब हम उसकी सारी आयत को नहीं पढ़ेंगे। अथीने वालों को वो देखता है कि वो देवताओं के बड़े मानने वाले हैं और उनके शहर की वो सैर करता है। इमाल 17 बाप, जब हम उसकी 22वीं आयत से नीचे देखना शुरू करते हैं बाप के अखीर तक, तो पालूस रसूल यहाँ पर बयान करता है उनको, ए अथीने वालों, मैं तुम्हारे शहर में आया, चला फिरा और देखा कि तुम बुतों के बड़े मानने वाले हो, और तुम्हारे बुतों में, वो कहता है कि मैंने गौर से एक गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बान गाह भी देखी जिस पर लिखा हुआ था नामालूम खुदा के लिए, पास जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, तुमको उसी की खबर देता हूं, खुदा जिसने जमीन दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया और आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, और ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमी के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांसें और सब कुछ देता है। सो उसने उनके रवैये को देखा और उनके बेफल कामों के उस नतीजे को देखकर कहा कि तुम्हें दुरुस्त होने की जरूरत है। और क्या हुआ वहां पर, जब उसने सच बताया कि तुम बुत परस्त हो, तुम्हारा शहर बुतों से भरा हुआ है, तो उसने उनको कहा कि मैं तुम्हें उस खुदा की खबर देने वाला हूं जिसके बारे में तुम नहीं जानते, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। अथीने के रहने वाले बहुत से देवताओं को मानते थे। यूनानी जो तबार था, यूनानी जो तरीकाकार था, दौर था, उसमें बहुत से देवी देवता थे, बहुत से देवी देवता थे, दौलत का, इश्क का, मोहब्बत का, पैसे का और बहुत सी बातों का। सूरज देवता था, ताकतवर देवता था, खेल का देवता था और बहुत से देवता देवियां थीं। तो हमें क्या कहा कि तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। बुत परस्ती से हमें भागना है, फरेब से हमें भागना है। और ये पहला हुक्म है, क्या लिखा है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। ये दूसरा हुक्म पालूस रसूल एक ही आयत में दो हुक्म देता है। उनको जांचो, उनसे दूर रहो और उन पर मलामत करो। अगर कोई फरेबी है तो उसे बताने की जरूरत है, भाई फिल्में सुनाना बंद करो। अगर कोई दगाबाज है तो उसे कहो दगा छोड़कर, चोर है तो चोरी छोड़कर अच्छा पेशा इख्तियार करे। सो हमें इन बातों में रफाकत नहीं रखनी, बल्कि किस बात में रफाकत रखनी है, इमाल 4:2 उसकी 42 आयत। इन बातों पर हमें गौर करने की जरूरत है ईमानदार होते हुए, जो इब्तदाई कलीसिया ने की थी। इमाल 2:42 आयत। ये वो तमाम नए ईमानदार हैं जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को कबूल किया है। पतरस के एक पैगाम पर 3,000 लोग जमायत में मिल गए। और क्या लिखा है, 42 आयत, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। ये चार बातें ईमानदारों की जिंदगी में इन तमाम कबाहतों को बाज रखती है। तालीम पाने में, जब तालीम पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हक और सच क्या है। जब रफाकत रखेंगे तो एक दूसरे की रहनुमाई करने वाले बनेंगे। जब रोटी तोड़ेंगे तो यीशु मसीह का हुक्म पूरा करेंगे। ये शायर बानी की तरफ भी है इशारा, लेकिन खास अल-खास मसीही रफाकत, शराकत, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की रहनुमाई करना और फिर दुआ करने में मशगूल। ये चार बातें आज बहुत दफा मसीही कलीसियाओं में नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। उसका जो सब नतीजा किस पर निकलता है, पासबानों पर। पासबान कहते हैं 2 मिनट लगाते हैं, या अगर आधा घंटा किसी घर के में बैठते हैं तो उसमें फलां की टमकां की उसकी उसकी केड़ा ड्रामा देखिया, की होया, की लियांदा, की नहीं लियांदा। कलाम की बात कम, इधर उधर की बातें ज्यादा। तो चार बातें जो बुनियादी कह सकते हैं कि पिलर हैं, सतून है हमारी मसीही जिंदगी में, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तलीम पाना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना और फिर दुआ करना। ये चारों अमल एक लफ्ज में पूरे होते हैं, रफाकत और शराकत। आप सब यहां पर रफाकत और शराकत रखते हैं, कलाम की रफाकत और शराकत, खाने पीने की रफाकत और शराकत, दुआ की रफाकत और शराकत, रोटी तोड़ने की रफाकत और शराकत, तलीम पाने और देने की रफाकत, शराकत। आज ये अफसोस से कहना पड़ता है, जिसमें बहुत दफा मैं भी शामिल हूं,